हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 40। भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि काम की व्याप्ति हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होती है, जिसके द्वारा हम इस काम का निर्मूलन करके करने में संभव हो सकें। श्लोक क्रमांक 40 को देखिए। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्य अधिष्ठान मुच्यते एतेर विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसके लिए हमें इंद्रियों को शुद्ध करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, नहीं तो हम ज्ञान को सही से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। श्री बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं कि ये जो काम है ये हमको मोहित कर देता है। इसका अर्थ है कि आत्मा, जिसे अपने बारे में जानना चाहिए और भगवान के बारे में जानना चाहिए, उसका एक डिस्टेस्ट या कह सकते हैं अरुचि हो जाती है अपने बारे में जानने में और भगवान के बारे में जानने में। ये काम के कारण होता है और भोग की तरफ उसको उन्मुख कर देता है। तो बद्ध आत्मा मतलब भोगोन्मुख, भोगों की तरफ बढ़ा हुआ, और उसका कारण क्या होता है? काम। तो एक बीमारी है जो हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को और हमारे बुद्धि को कवर की हुई है। तात्पर्य को देखिए। चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर, यानी कि स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया है कि काम से बड़ा शत्रु कोई भी नहीं है जीवात्मा के लिए। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्र तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें समझ में आना चाहिए। मन में जो भी संस्कार हैं, मन में जो भी संस्कार हैं भोग के, वो इंद्रियों के द्वारा उसकी पूर्ति की गई है। जिस विषय के बारे में हमने कभी सुना नहीं है, जिस विषय को हमने कभी देखा नहीं है, अनुभव नहीं किया है अपनी इंद्रियों से, वहाँ मन जा नहीं सकता है। जब आप जप करते हैं तो आप देखेंगे मन बहुत सारे विषयों में जाता है, अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं विषयों में जाएगा जिनका आपको अनुभव है। बात बहुत सिंपल सी है लेकिन बहुत गहरी है। यानी अगर अपने मन को हम चाहते हैं कि हमारा मन भगवान में लगे, तो अपनी इंद्रियों को हमें लगातार भगवान में लगाए रखना पड़ेगा। अच्छे इनपुट दें, भगवत संबंधी इनपुट दें मन को, तो मन फिर धीरे धीरे करके उन्हीं भगवत विषयों में ही जाने लगेगा। जैसे कि इस समय आप भगवत गीता के बारे में सुन रहे हैं, तो स्वभावतः कुछ बातें तो मन में आएंगी ही भगवान की वाणी के संबंध में, और इससे हमारा मन शुद्ध होता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जितना हम अपने इंद्रियों से भोग करते हैं, उतना ही मन और मलिन हो जाता है और उसकी चंचलता और बढ़ जाती है। और इसके विपरीत हम भगवान की भक्ति करने का प्रयास करें तो अपने इंद्रियों को जितना हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, उतना ही हमारा मन पवित्र हो जाएगा, और जितना मन पवित्र होगा उसकी चंचलता और कम हो जाएगी और भगवान में अपने मन को लगाना और अधिक आसान हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवण। जब हम विषय भोगों के बारे में सुनते हैं तो भोग की लालसा आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपके शहर में कोई पान पूरी यानी कि गोलगप्पे बनाने वाला है, तो यदि आप उसके बारे में सुने ही नहीं हैं तो कभी इच्छा या स्पृहा होगी ही नहीं वहाँ पर जाकर कुछ खाने की। लेकिन जब किसी व्यक्ति ने, जिसने उसको खाया हुआ है, उससे आप उसका गुणगान सुनते हैं तो आपके हृदय में भी इच्छा आ जाती है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो अब इसी को अगर पॉजिटिव वे में अप्लाई करें, अगर हम भक्तों का संग करते हैं, भक्तों से श्रवण करते हैं, तो हम सुनते हैं वो भगवान कितने अच्छे हैं, भगवान कितने महान हैं, तो मुझे उनकी सेवा करना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रवण के माध्यम से हृदय में काम और प्रेम दोनों उत्पन्न हो सकता है। भोग के बारे में सुनेंगे तो काम, और भगवान के बारे में सुनेंगे तो प्रेम उत्पन्न होगा। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण ऋषियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। मतलब काम के कारण हम अपने काममय बुद्धि के कारण, बुद्धि के द्वारा व्यक्ति निर्णय ले सकता है, निर्णय करने की क्षमता बुद्धि में होती है। अगर बुद्धि थोड़ी सी शुद्ध है तो व्यक्ति समझ सकता है कि वह शरीर नहीं है। लेकिन अगर बुद्धि काम से पीड़ित होती है, काम से काम के वशीभूत होती है, तो ये बुद्धि बाध्य कर देती है हमको अपने मिथ्या अहंकार से पहचान करने के लिए, और उस मिथ्या अहंकार के कारण हम अपने आप को शरीर से और अपने इंद्रियों से पहचान कर लेते हैं। अपनी पहचान इन इंद्रियों से और मन से करते हैं। फिर क्या होता है, पहचान करने से क्या होता है, जो चीजें मेरे मन को पसंद है, जो चीजें मेरी इंद्रियों को पसंद है, मैं सोचता हूं कि ये मुझे पसंद है, और फिर इंद्रियों और मन को तर्पण करने में, संतुष्ट करने में मैं लग जाता हूं। तो इस प्रकार से सारी क्रिया होती है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। ये जो मन की अनुकूल वृत्ति है, मन पूर्वगत संस्कारों के कारण कुछ प्रकार के किसी प्रकार के अनुभव को अच्छा मानता है और उसकी तरफ अनुकूल वृत्ति होने लगती है तो हम उसको सुख मानते हैं, और कुछ संस्कारों को बुरा मानता है उसके प्रति, उसके जो प्रति जो है प्रतिकूल वृत्ति होती है, विपरीत दिशा में बहता है, मुझे पसंद नहीं है, उसको हम दुख मानने लगते हैं। श्रीमद् भागवत में आत्मा के मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्यात्मबुद्धि कुणपेत्रि धातुके स्वधि कलत्रादि शुभम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। और ये उद्गार किसी के नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के स्वयं हैं। तो इसे समझ में आना चाहिए कि अगर हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं लेकिन भगवान की, तब एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें देखेंगे कि ये जो बुद्धि है जिसमें, जिसके द्वारा हम देहात्म बुद्धि से कहना चाहिए, इसका मूलभूत कारण हमारी बुद्धि है। ये चीज़ मैं अभी भी सोच रहा हूँ, आज तक मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अपने को शरीर मानना ये हमारी बुद्धि के कारण होता है, काममय बुद्धि के कारण, जो कि प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया है। तो अपनी बुद्धि को अब हमको शास्त्र से शुद्ध करना है और शास्त्रों के वचनों को सुन करके ये निर्णय करना है, अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो क्यों अपनी इंद्रियों को और अपने मन को केवल भोग में लगाऊं। और इसकी एक और बात महत्वपूर्ण है, जितना अधिक हम अपनी इंद्रियों को और अपने मन को भोगों में लगाते हैं उतना ही और डल हो जाती हैं, समझने की क्षमता कम हो जाती है। जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो लोग अनुभव करेंगे कि शुरुआत में भगवद गीता की बातें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र जब करते रहते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते रहते हैं और भगवान के बारे में सुनते रहते हैं, तो इससे बड़ी ही कह सकते हैं चमत्कारिक रूप से हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जो भगवत चर्चा है, भगवत संबंधी विषय बातें हैं, वो बड़ी आसानी से समझ में आने लग जाती हैं। तो इसलिए अपने को प्रयास करना है कि अपनी बुद्धि को शुद्ध रखें। हम ना तो भारतीय हैं, ना तो हम अमेरिकन हैं या कुछ भी, इस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिकल वे में बोल सकते हैं, लेकिन अंदर से अस्वीकार करना चाहिए, हम सब लोग कृष्ण के अंश हैं। तो इसलिए इन कार्यों के लिए, यानी कि देश पूजा के लिए या फिर स्वजनों के संबंध के कारण, अपने असली कर्तव्य जो भगवान की भक्ति है, भागवत धर्म है, उसके आचरण में ढील नहीं देना चाहिए। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर व्यक्ति मान लीजिए वृंदावन आता है या कहीं और जाता है, तो केवल नदी के जल में स्नान कर ले और वैष्णव के मुख से हरि कथा को ना सुने तो व्यक्ति एक जानवर की तरह ही है। और ये क्यों है, इसका भी कारण है, एक गाय और बैल भी अपने आप को शरीर मान रहा है और वो भी गंगा जी में या और कहीं भी आके स्नान कर सकते हैं। अच्छी बात है गंगा जी में स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर हम इस दैहिक चेतना से ऊपर नहीं उठ रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ, तो फिर ये व्यक्ति वो जानवर की तरह है। तो इसलिए हमको अपना जीवन, मानव जीवन जो हमको मिला है, इसको प्रयास करना चाहिए कि हम मानव ये कह सकते हैं आत्मा की तरफ उठने का प्रयास करें, आत्मा के ज्ञान को सुनने का प्रयास करें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुनना। जितना अधिक हम श्रवण करेंगे उतना इन बातों को हम और अधिक समझ पाएंगे। आगे के बारे में भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे किस प्रकार से हम इसको काम को वशीभूत कर सकते, काम को नियम में लेके आ सकते हैं। तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा।